एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल सवाल है।
हाँ, और वो सवाल है परिवार आखिर होता क्या है।
ये सुनने में बहुत सीधा लगता है ना?
बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या परिवार का मतलब सिर्फ वो लोग हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है,
या फिर वो दोस्त जो आधी रात को भी आपके लिए हाजिर हों, क्या वो भी परिवार है?
और आजकल तो हमारे चारों तरफ इतने तरह के परिवार हैं।
सही बात है, सिंगल पेरेंट्स हैं, ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने बच्चे गोद लिए हैं, LGBTQ+ पार्टनर्स हैं,
और कई लोग तो शादी के बिना ही साथ रह रहे हैं। तो क्या हमारी जो पुरानी परिभाषाएं हैं वो अब भी काम करती हैं? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए आज हम ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर जोनाथन हेरिंग की किताब फैमिली अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की दुनिया में उतर रहे हैं।
और ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम परिवार को देखने का अपना नजरिया ही मतलब पूरा बदल डालें।
तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि परिवार असल में है क्या बला।
अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
हाँ, क्योंकि वहीं से सारी बात दिलचस्प हो जाती है।
जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये किताब किसी समाजशास्त्री या शायद मनोवैज्ञानिक ने लिखी
होगी। बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि जोनाथन हेरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं।
कानून के प्रोफेसर?
हाँ, वो फैमिली लॉ यानी पारिवारिक कानून के एक्सपर्ट हैं।
और मुझे लगता है यही बात उनके नजरिए को खास बनाती है।
सही कहा, वो सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन असली अदालती मामलों में गुजारी है जहाँ ये तय करना होता है कि
तलाक के बाद बच्चा किसके पास रहेगा,
सरोगेसी में असली माँ कौन है,
या समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का हक है या नहीं।
तो मतलब वो इन सवालों को सिर्फ किताबी नज़र से नहीं बल्कि इंसानी कहानियों और कानूनी उलझनों के बीच से देखते हैं।
वो जानते हैं कि परिवार शब्द की परिभाषा बदलने से लोगों की जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं।
हाँ, कैसे किसी को अधिकार मिल जाते हैं और किसी से
छिन जाते हैं।
उनका विश्लेषण सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ और व्यवहारिक है।
तो ये किताब असल में कहती क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो तो?
अगर एक लाइन में कहूँ तो हेरिंग का मुख्य तर्क ये है कि परिवार की कोई एक कुदरती या हमेशा से चली आ रही परिभाषा है ही नहीं।
मतलब ये कोई नेचुरल चीज नहीं है?
नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया है जिसे समाज और कानून मिलकर बनाते हैं और जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है।
अच्छा, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। क्या परिवार वो है जो दिखता है,
यानी माँ बाप बच्चे एक पारंपरिक ढांचा,
या परिवार वो है जो करता है, यानी प्यार देखभाल और एक दूसरे को सहारा देना?
बिल्कुल, और वो कहते हैं कि हमें पहले वाले नजरिए को छोड़कर दूसरे वाले को अपनाना होगा।
मतलब हमें परिवार को उसके रूप यानी फॉर्म से नहीं
बल्कि उसके काम उसके फंक्शन से पहचानना चाहिए।
हमें ये देखना चाहिए कि उस रिश्ते का रोल क्या है, उसका गोल यानी मकसद क्या है।
और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बहस नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हेरिंग दिखाते हैं कि जब हम परिवार को एक सख्त पारंपरिक ढांचे में बांध देते हैं तो हम अनजाने में बहुत से लोगों को समाज से बाहर कर देते हैं,
उन्हें अकेला और असुरक्षित महसूस कराते हैं।
हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका परिवार नॉर्मल नहीं दिखता। इसी को समझने के लिए हेरिंग हमें दो अलग अलग चश्मे देते हैं जिनसे हम परिवार को देख सकते हैं। एक है रूप का चश्मा, जिसे वो फॉर्मलिस्ट नजरिया कहते हैं,
और दूसरा है काम का चश्मा यानी फंक्शनलिस्ट नजरिया।
फॉर्मलिस्ट नजरिया तो हम सब जानते हैं, ये खून के रिश्ते और शादी पर टिका है।
हाँ, इसके हिसाब से परिवार वो है जिसमें माता पिता शादीशुदा हैं और बच्चे उनके अपने हैं। सीधी साधी परिभाषा है।
लेकिन इसकी समस्या क्या है?
समस्या ये है कि ये आज की दुनिया की सच्चाई से मेल नहीं खाती।
इस परिभाषा में वो परिवार कहाँ जाएगा जहाँ बच्चे को गोद लिया गया है?
वो सिंगल माँ कहाँ जाएगी जो अकेले अपने बच्चे को पाल रही है?
या वो दो दोस्त जो सालों से एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे हैं?
ये परिभाषा उन सबको एक तरह से बाहर कर देती है।
तो हेरिंग कहते हैं कि हमें फंक्शनलिस्ट नजरिए को अपनाना चाहिए। मतलब ये देखो कि वो समूह करता क्या है।
हाँ, क्या वो एक दूसरे को आर्थिक और भावनात्मक सहारा देते हैं? क्या वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं?
क्या वो एक पहचान और अपनेपन का एहसास देते हैं? अगर जवाब हाँ है तो वो एक परिवार है,
भले ही उनके बीच खून का रिश्ता हो या ना हो।
लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है।
क्या
अगर देखभाल ही परिवार है, तो क्या हॉस्टल में साथ रहने वाले दोस्त जो एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं और बीमार पड़ने पे ख्याल रखते हैं,
वो भी एक परिवार है? लाइन कहाँ खींची जाए?
हाँ, क्या उन्हें परिवार मानकर कानून कोई अधिकार देगा?
यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, शायद नहीं। और यहीं पर हेरिंग का तर्क है कि कानून को ज्यादा लचीला होना पड़ेगा।
अच्छा,
हो सकता है कि हमें परिवार और दोस्ती के बीच कुछ नई श्रेणियां बनानी पड़े, जैसे गहरे सहयोगी रिश्ते जिन्हें शायद कुछ कानूनी मान्यता मिले। ये बहस अभी शुरू हुई है।
यह एक और दिलचस्प बात सामने आती है, परिवार का मकसद भी तो बदला है।
हाँ, समय के साथ।
सोचिए, 100-200 साल पहले परिवार एक आर्थिक इकाई हुआ करता था।
एक किसान का परिवार मिलकर खेती करता था, एक व्यापारी का परिवार मिलकर दुकान चलाता था। मकसद था मिलकर जिंदा रहना।
सही बात है, लेकिन आज हम परिवार से क्या उम्मीद करते हैं?
प्यार, भावनात्मक सुरक्षा, अपनापन।
आज परिवार एक बेरहम दुनिया में एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है।
हमारी उम्मीदें आर्थिक से ज्यादा भावनात्मक हो गई हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती
तो रिश्ते बिखर जाते हैं।
और यहीं से एक और बड़ी बहस शुरू होती है, प्यार बनाम जेनेटिक्स। क्या खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है?
हेरिंग्स इस सदियों पुरानी कहावत पर सवाल उठाते हैं।
वो IVF, सरोगेसी और अडॉप्शन के उदाहरण देते हैं।
सरोगेसी का उदाहरण तो कमाल का है।
हाँ, वो तो है।
सोचिए, एक बच्चा है जिसकी 3 माँ हैं, एक जिसने अपना अंडा दिया यानी जेनेटिक माँ, दूसरी जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला यानी जन्म देने वाली माँ, और तीसरी जो अब उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही है यानी सामाजिक माँ। अब बताइए, असली माँ कौन है?
ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है
ना? कानून के लिए ये तय करना कितना मुश्किल होगा।
हेरिंग बताते हैं कि अब दुनिया भर के कानून धीरे धीरे ये मान रहे हैं कि जो बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसी का हक सबसे ज्यादा है।
तो मतलब काम रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
बिल्कुल। लेकिन किताब का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर बात करना थोड़ा असहज करता है, पर वो बहुत जरूरी है।
कौन सा?
हेरिंग इसे कहते हैं परिवार का स्याह पक्ष, द डार्क साइड ऑफ द फैमिली।
अच्छा,
ये वो बात है जिस पर हम बात करने से कतराते हैं। हम हमेशा सुनते हैं मेरा परिवार मेरी जन्नत,
और हेरिंग कहते हैं कि यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। हम परिवार को एक सुरक्षित किला मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि किले के अंदर भी खतरे हो सकते हैं।
बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार अजनबियों से नहीं
बल्कि
परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।
लेकिन परिवार की ये जो आदर्श छवि है, ये इस कड़वी सच्चाई पर पर्दा डाल देती है।
लोग शर्म और घर की इज्जत के डर से चुप रह जाते हैं,
और समाज भी ये कहकर दखल नहीं देता कि ये उनका निजी मामला है।
हेरिंग जोर देकर कहती हैं कि जब तक हम ये मानना बंद नहीं करेंगे कि हर परिवार पवित्र और सुरक्षित होता है, तब तक हम परिवार के अंदर मौजूद कमजोर लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे,
जैसे बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों की।
और आखिर में वो राज्य और कानून की भूमिका की बात करते हैं। कानून तय करता है कि शादी कौन कर सकता है, विरासत किसे मिलेगी,
और वो चुने हुए परिवारों यानी चोजन फैमिलीज का जिक्र करते हैं।
हाँ, खासकर LGBTQ+ समुदायों में, जहाँ लोगों को अक्सर उनके जैविक परिवार स्वीकार नहीं करते,
तो वे अपने दोस्तों और साथियों के साथ एक नया चुना हुआ परिवार बना लेते हैं
जो उन्हें जैविक परिवार से भी ज्यादा प्यार और सहारा देता है।
ये तो भारत में मुंह बोले रिश्तों जैसा ही है।
पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। मेरे लिए जो पहली और सबसे बड़ी बात थी वो ये है कि परिवार कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
ये एक सामाजिक और कानूनी रचना है, कोई कुदरती सच्चाई नहीं है।
हाँ, ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है
कि जिसे हम इतना प्राकृतिक मानते हैं, उसे असल में समाज और कानून ने मिलकर गढ़ा है।
और अगर हमने इसे गढ़ा है तो हम इसे बदल भी सकते हैं।
दूसरा बड़ा संदेश जिस पर हमने काफी बात की वो है, रूप से ज्यादा कार्य महत्वपूर्ण है, फंक्शन ओवर फॉर्म।
हमें लोगों को इस आधार पर नहीं आंकना चाहिए कि उनका परिवार कैसा दिखता है,
बल्कि इस आधार पर कि वो रिश्ते क्या भूमिका निभा रहे हैं।
और ये बात भारत में तो और भी ज्यादा मायने लगती है।
हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा है, मुंह बोले भाई बहन होते हैं,
पड़ोसी चाची मासी बन जाती हैं। हम अनजाने में हमेशा से फंक्शनलिस्ट रहे हैं।
सही कहा, ये किताब बस हमें उस चीज को समझने का एक नया नजरिया देती है।
तीसरा संदेश थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत जरूरी,
वो स्याह पक्ष वाला।
हाँ, परिवार प्यार का स्रोत हो सकता है तो नुकसान का भी केंद्र हो सकता है। इसे सिर्फ एक आदर्श के रूप में देखना खतरनाक है।
ये मानना कि हर परिवार सुरक्षित होता है उन लोगों के साथ अन्याय है जो अपने ही घर में शोषण का शिकार होते हैं।
और आखिरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी
वो है राज्य और कानून की ताकत।
हाँ, सरकारें जब समलैंगिक विवाह पर या अडॉप्शन पर या विरासत पर कोई कानून बनाती हैं, तो वो सिर्फ नियम नहीं बना रही होती,
वो असल में ये तय कर रही होती हैं कि हमारे समाज में किसे परिवार माना जाएगा और किसे नहीं।
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। नहीं है?
लेकिन हेरिंग के तर्कों का जो सार है,
हाँ वो बहुत पावरफुल है। पहला तो यही है, शायद हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि परिवार क्या है,
और ये पूछना शुरू करना चाहिए कि हम परिवारों से क्या करवाना चाहते हैं।
ध्यान, प्यार, देखभाल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर होना चाहिए, चाहे रिश्ते का रूप कुछ भी हो।
ये सीधे सीधे रोल और गोल वाली बात है।
बिल्कुल, लक्ष्य रिश्तों को मजबूत करना है, न कि उन्हें किसी पुराने खांचे में फिट करने की कोशिश करना।
दूसरा विचार स्याह पक्ष से जुड़ा है और ये बहुत तीखा है।
हाँ, वो ये है, परिवार को प्यार की एक आदर्श और निजी पनागाह के रूप में देखना न केवल भोलापन है बल्कि खतरनाक भी है।
यही आदर्शीकरण परिवार के स्याह पक्ष दुर्व्यवहार, नियंत्रण, उपेक्षा को चुप्पी की आड़ में पनपने देता है।
ये बहुत झकझोर देती है।
ये हमें याद दिलाता है कि चुप रहना भी एक तरह से शोषण में भागीदार बनना है।
और तीसरा विचार कानून की भूमिका पर, जो बहुत शक्तिशाली है। कानून सिर्फ ये नहीं दिखाता कि परिवार क्या है, वो सक्रिय रूप से इसका निर्माण करता है।
हर कानूनी फैसला, शादी पर, माता पिता होने पर, तलाक पर, इस बारे में एक बयान है कि हमारा समाज किसे परिवार के रूप में महत्व देना और पहचानना चुनता है। तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन विचारों का क्या करें?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो है दूसरों के परिवारों को लेकर कम जजमेंटल होना। जब हम किसी सिंगल मदर को देखें या किसी ऐसे कपल को देखें जिनके बच्चे नहीं हैं,
या किसी समलैंगिक जोड़े को देखें, तो उन्हें किसी कमी की नज़र से देखने की बजाय उनके प्यार और सहयोग के बंधन का सम्मान करें।
बिल्कुल, और ये हमें अपने परिवार को भी बेहतर बनाने का एक रास्ता दिखाता है।
कैसे?
हम दुनिया को दिखाने के लिए परफेक्ट फैमिली का नाटक करने की बजाय आपसी देखभाल, सम्मान और खुलकर बात करने पर ध्यान दे सकते हैं।
ये मान सकते हैं कि हमारे परिवार में भी कमियां हो सकती हैं और उन पर काम करने की जरूरत है,
और एक नागरिक के तौर पर भी ये हमें जागरूक बनाता है।
हाँ, अगली बार जब समान लिंग विवाह, विरासत के अधिकार या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर बहस हो,
तो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज के लिए परिवार की परिभाषा को बदलने की लड़ाई है।
और जो लोग शिक्षक, डॉक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता जैसे पेशों में हैं, उनके लिए तो ये समझ और भी जरूरी है।
हाँ, जैसे एक टीचर के लिए ये समझना कि बच्चे के घर पर माता पिता की जगह अभिभावक कोई भी हो सकता है,
उसकी दादी भी या बड़ी बहन भी।
अगली बार जब कोई स्कूल का कोई फॉर्म देखे जिसमें सिर्फ मदर्स नेम और फादर्स नेम का कॉलम हो,
तो आपको समझ आएगा कि ये छोटा सा डिजाइन भी कितने लोगों को बाहर कर देता है।
इस पूरी चर्चा से अगर मुझे एक बात लेकर जानी हो तो वो ये है कि परिवार एक संज्ञा, एक नाउन से ज्यादा एक क्रिया, एक वर्ब है।
अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है।
ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि प्यार करने, देखभाल करने और समर्थन देने का एक लगातार चलने वाला काम है।
ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट या डीएनए टेस्ट नहीं है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि परिवार की मुश्किलों और उसके स्याह पक्ष को स्वीकार करने से वो कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत बनता है।
जब हम ये दिखावा करना बंद कर देते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तभी हम असली समस्याओं को सुलझाने
और ईमानदारी से एक दूसरे की मदद करने की शुरुआत कर सकते हैं।
बिल्कुल सही। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं।
अगर परिवार का रूप लगातार बदल रहा है और देखभाल ही उसका असली आधार है, तो क्या भविष्य में हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को परिवार की बजाय केयर नेटवर्क या सपोर्ट यूनिट जैसे नए नामों से जानेंगे?
और इसका हमारे समाज और हमारी सोच पर क्या असर पड़ेगा?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।